आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सीलबंद लिफाफे में संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट कमिश्नर ने किया था सर्वेक्षण। गोरखपुर में आज पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नए रैन बसेरे और जल शोधन परियोजना का भी करेंगे शुभारंभ। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री युवा अभियान की शुरुआत करेगी प्रदेश सरकार। उद्यम लगाने के लिए युवाओं को दिया जाएगा ब्याज मुक्त ऋण। नए वर्ष में सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी होगा फार्मर आईडी। नहीं होगी बार बार केवाईसी कराने की जरूरत। और प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में तेजी से गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कल कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा था। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 19 और 24 नवंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया था। इसी दौरान 24 नवंबर को हिंसा हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने कासगंज में वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल बाद 28 आरोपियों को कल दोषी करार दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अगुवाई वाली अदालत में आज सजा का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गोरखपुर बस्ती मंडल के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधायक निधि से कराया गया है। इसके बन जाने से एथलेटिक्स, निशानेबाजी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुश्ती, लॉन टेनिस सहित कई खेलों के खिलाड़ियों को अभ्यास करने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में नगर निगम द्वारा 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनवाए गए नए रैन बसेरे और 2,70,00,000 रुपए की लागत वाली जल शोधन परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी, किसान हित और खाद्य एवं दवा सुरक्षा से जुड़ी 1,533 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में विकास का माहौल बनाने में जुटी हुई है।
नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा।
प्रदेश सरकार ने कल देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 46 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने के आदेश जारी किए। इस फेरबदल में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को एक बार फिर गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को वित्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग का दायित्व भी दिया गया है। एल वेंकटेश्वर लू को प्रमुख सचिव समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 24 जनवरी को मनाए जाने वाले यूपी दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा अभियान शुरू करने जा रही है। ये देश का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें युवाओं को उद्यम लगाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कल यूपी दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों का चयन कर मुख्यमंत्री युवा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, पूर्व कुलपति और शिक्षाविद अब निक्षय मित्र की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीबी उन्मूलन अभियान के संबंध में की गई बैठक में ये फैसला लिया। निक्षय मित्र के रूप में ये वरिष्ठ नागरिक टीबी उन्मूलन के प्रयासों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार फार्मर आईडी बनाने पर जोर दे रही है। नए वर्ष में कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगी। फार्मर आईडी का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके बन जाने के बाद किसानों को बार बार KYC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और कृषि की अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर 11 से 13 जनवरी तक राम मंदिर में दर्शन के लिए VIP और VVIP पास नहीं बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को करेंगे। 3 दिवसीय आयोजन में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। प्रयागराज महाकुंभ में कल श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने राष्ट्रीय वैभव के साथ छावनी क्षेत्र में प्रवेश किया। इस अवसर पर शहर में पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। छावनी प्रवेश यात्रा में 4 महिला मंडलेश्वर भी शामिल हुईं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कल खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी। नोएडा के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार निशानेबाजी की स्पर्धा में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के विश्व चैंपियन डी कुकेश और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को इस वर्ष के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नोएडा की रहने वाली शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल और मेरठ की पैरा एथलीट प्रीति पाल सहित देशभर के 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 5 खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान करेंगी। पुरस्कारों की घोषणा होने के बाद खेल रत्न के लिए चयनित प्रवीण कुमार ने कहा कि इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
मैंने डाला था खेल रत्न के लिए, जब मैंने देखा कि ये हो चुका है तो मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी, और मोटिवेट भी फील कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन है उनमें मैं और अच्छा करूंगा। और मोदी जी ने जो हमें रेस्पेक्ट जो दिलाई है पूरे इंडिया में कि डिसेबल पर्सन, दिव्यांग लोग भी कुछ कर सकते हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो ये प्राउड की बात है।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार हैंडबॉल की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप IHF ट्रॉफी की शुरुआत आज से होगी। 7 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले KD सिंह बाबू स्टेडियम में नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल में खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के महासचिव डॉ आनंदेश्वर पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगी। उन्होंने बताया कि IHF ट्रॉफी में पुरुष यूथ और जूनियर श्रेणियों में मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें भारत, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की टीमें भाग ले रही हैं। प्रदेश के अधिकांश जिले इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण लगभग सभी जिलों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीलबंद लिफाफे में संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट कमिश्नर ने किया था सर्वेक्षण। गोरखपुर में आज पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नए रैन बसेरे और जल शोधन परियोजना का भी करेंगे शुभारंभ। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री युवा अभियान की शुरुआत करेगी प्रदेश सरकार, उद्यम लगाने के लिए युवाओं को दिया जाएगा ब्याज मुक्त ऋण। नए वर्ष में सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी होगा फार्मर आईडी, नहीं होगी बार बार KYC कराने की जरूरत। और प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में तेजी से गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।